ये विशेष क्लास बाबा की मुरली के बाद वो बातें जो हमने सुनी तो सही, लेकिन समझे कैसे और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो, इसके बारे में कई बार सोचते हैं, कई बार नहीं भी सोचते। मुरली के पॉइंट तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से प्रैक्टिकल में वो करें जिससे बाप दादा खुश हों हमसे, क्या चाहते हैं बाप दादा हमसे, ये बातें समझाने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय रमेश भाई जी। आप हमारे वरिष्ठ भ्राता जी हैं, सभी एक हाथ हिलाकर अभिनंदन करेंगे। परिचय सुनाने के बाद अक्सर आदरणीय रमेश भाई जी एक परिचय और देते हैं कि बहन ने ये तो बताया नहीं कि मैं आत्मा हूँ, इसीलिए मैं यहीं से आज शुरुआत करती हूँ। रमेश भाई जी विशेष आत्मा हैं और शिव बाबा के अनन्य रतन, और इस वर्ल्ड स्टेज पर जो पार्ट बजाने आए हैं वो पार्ट भी आपका बहुत बहुत विशेष है। आपका पूरा परिवार इस ज्ञान में चला, इस ज्ञान को समझा, साकार की पालना ली। आपने अपनी कॉमर्स की डिग्री पास करने के बाद लॉ डिग्री, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एग्जामिनेशन, ये सब 1956 में पास करने के बाद आप पूरी तरह से बाबा की सेवा से एसोसिएट हुए, क्योंकि पूरा परिवार ज्ञान में था और इसी वजह से उन सेवाओं में चार चांद लगते गए। सब प्रकार की सेवा जिसमें अपने देश में और इसके अतिरिक्त पवित्र धन की अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए, सबको अकाउंटेंसी के माध्यम से भी ज्ञान समझाना, और किस तरह से वो बातें जो हमें सिंपल कारोबारी बातें लगती हैं उसके माध्यम से भी ज्ञान समझा देना। आपके बहुत अच्छे आर्टिकल्स पवित्र धन के बारे में समय प्रति समय ज्ञान अमृत पत्रिका में छपते हैं, उसके बारे में किताब भी बनी हुई है। आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के, आप फाउंडर सेक्रेटरी हैं ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी के, आप गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के, आपका और भी ये विशेष पार्ट है आपके, आप चेयरपर्सन हैं जूरिस्ट विंग राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, आप चेयरपर्सन हैं स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्पार्क, ये बहुत अच्छा वो ग्रुप है जो कि स्पेशल तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या योजनाएं बने हम सबके जीवन में उस पर काम करते हैं। आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है प्योर मनी इकोनॉमिक्स पर, और इसके अतिरिक्त अपने देश में विदेशों में सभी ब्रह्मावत्सों को भी तीव्र पुरुषार्थ के लिए जागृत किया, प्रेरित किया, अनेक आत्माएं आपके जीवन से प्रभावित हुई और पूरा परिवार ज्ञान में बाबा के बहुत नजदीक। जिस तरह के साकार पालना के अनुभव आपने किए, जो बड़े भाई जी दादाजी जैसे कहानी सुनाते हैं, उस तरह साकार बाप दादा के संग की कहानियां जो आपसे सुनी हैं वो कई तो यूनिक हैं, जो और कहीं से सुनने को नहीं मिलते ऐसे एग्जाम्पल। तो आज की मुरली के साथ साथ हम आपसे वो उदाहरण, वो बातें सुनेंगे। आदरणीय भाई जी समझाएंगे आज की मुरली, जो बाबा ने कल रात को मुरली चलाई, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे जीवन में कैसे हो।
ओम शांति। आज 1 फरवरी है और नया मास का पहला दिन भी है। इस मास को वरदान है, इस मास के अंत में 28 तारीख को शिवरात्रि भी है। मैं समझता हूँ कल की जो अव्यक्त मुरली जो चली है उसका बेस जो है यही होना चाहिए। शिवरात्रि आ रही है, बाकी सब प्रकार के कार्यक्रम तो हम करते हैं, परंतु अभी लक्ष्य यही रखना चाहिए तो किसी को भी कोई भी एरिया किसी व्यक्ति आदि कोई भी है इनको बाबा का परिचय देने का मकसद मतलब रह न जावे उसी हिसाब से कल की मुरली हम पढ़ेंगे सुनेंगे समझेंगे तो बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने बहुत स्नेह से सभी बातें सुनाई और आखिर में अपना जो धर्मराज का स्वरूप भी है उस स्वरूप के लेकर के भी थोड़ी बातें बता दी। मैं हमेशा ही मानता हूँ शायद आप सब मानेंगे या ना मानेंगे तो आस्ते आस्ते ऐसा हो रहा है अपने दैवी परिवार में कि शिव बाबा का धर्मराज का स्वरूप जो है उस स्वरूप से हम पहले जितने डरते थे इतने अभी डरते नहीं है और उसके कारण क्या क्या होता है आप हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से बाबा का जो लाश का कारोबार जो कल सुबह उन्होंने बताया आप अपने जीवन के बारे में उसका बातें वो भी सुननी पड़ेंगी। कल का मुरली का जो सार जो है हमारे राजू भाई ने लिखा हुआ है अचानक के पहले अलर्ट रहे स्वयं को पावरफुल बनाओ खुश मिजाज रहे संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ साथ साथ हर एरिया में संदेश देने का कार्य पूरा करो अब कोई का भी उलय ना रह न जाए। बुढ़ा दादी ये अपना ये मंच के ऊपर 7:41 को आए बैठना करना सब जो हुआ सबने छुट्टी दिया विदाई दिया और विदेही बनने के लिए बाबा के पास जाने के लिए गीत जो बजा वो 7:45 को गीत बजा 7:49 चार मिनट के अंदर ही गुलजार दादी बाबा के पास वतन में जाने के लिए उड़ गई और 7:55 को बाबा का 7:55 माना 6 मिनट के बाद बाप दादा का दिव्य अवतरण गुलजार दादी के तन में हुआ और 8:06 तक अर्थात हम गिनती करें तो 11 मिनट बाबा ने हम सबको दृष्टि दी। हमारा भाई साहब जो था रवि भाई जो था वो समझा कि अभी दृष्टि देना पूरा किया होगा खड़े भी रह गए यहाँ तक भी आ गया परंतु बाबा ने आप सबने देखा होगा नोट किया हुआ होगा कि बाबा ने दृष्टि देना चालू ही रखा। इस प्रकार से 8:06 तक बाबा ने दृष्टि देकर मुरली चलाई अर्थात अब गिनती करें 7:55 से मुरली बाबा की दिव्य अवतरण हुआ और 9:41 बाबा ने हम सबसे विदाई लिया अर्थात गिनती किया जाए तो 1:46 बाप दादा हमारे साथ में थे। जो मुरली चलाई 8:06 को मुरली चलाई और जब बाबा ने दादियों को ऊपर बुलाया दादी ऊपर आई और मुरली ने बताया कि नहीं सेवा का टर्न पंजाब जोन का है तो मतलब तब तक मेन मुरली चली वो है 9:07 अर्थात 1:01 बाबा ने मुरली चलाई 9:07 पंजाब के टर्न है उसके बारे में बाबा ने बताया नहीं सुनाया और भी मतलब बाकी बाद में स्टेज पर कारोबार चला मुन्नी बहन से मिले डबल विदेशियों से 9:12 को मिले इस प्रकार से मिलते रहे सबको निर्वीर भाई को मिले हमको मिले इस प्रकार से जयंती बहन को लास्ट में मिल करके 9:41 को बाबा अपनी विदाई लिया स्थूल रूप से साकार रूप से। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई है आप सब जानते हैं हम सब इतने सारी सभा जो बैठी हुई थी सारी सभा को बाबा ने बहुत ही अच्छी रीत से ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दिया और आगे की इश्यू जो सेवा क्या करनी चाहिए सेवा का तरीका क्या होना चाहिए ये बताया। इसके ऐसे ही एक साकार मुरली में एक बाबा ने बताया हुआ था जो पुराने भाई बहन जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको मालूम होगा बाबा ने कहा था कि बाबा बाप जो है बच्चों से और कुछ नहीं मांगता है बाप जो है बच्चों से और कुछ नहीं मांगता है परंतु गुरु दक्षिणा के रूप में क्योंकि आप जानते हैं बाप परमात्मा पिता भी है परम शिक्षक भी है और परम सदगुरु भी है, तो सदगुरु रूप में बाबा ने कहा था कि साकार मुरली के अंदर कि मैं कुछ भी नहीं मांगता हूं बच्चों से, परंतु गुरु दक्षिणा के रूप में एक बात मांगता हूं कि कोई भी मेरा बच्चा जो है, मैं आया हुआ हूं, मेरा दिव्य अवतरण हो चुका है और मैं यहां पर सृष्टि पर संगम युग पर आकर के सबको श्रेष्ठ दुनिया का वर्षा देने के लिए आया हुआ हूं, इस प्रकार का संदेश सबको मिल जाना चाहिए। कोई भी ऐसा ना बाद में उलह ना देवे कि हमको हे परमात्मा आप आए और आपने हमको आपका संदेश नहीं मिला और हमें आपके द्वारा जो यज्ञ की रचना हुई है उसका संदेश मिला नहीं और हमें अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्गदर्शन भी नहीं मिला। ये उलैना की बात जो कल बाबा ने कही मैंने नोट किया है। बाबा ने उलैना शब्द जो है ना 12 बार यूज किया हुआ है, 12 बार, और अचानक शब्द जो है, अचानक शब्द बाबा ने 11 बार यूज किया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि बाबा ने 11 बार जो अचानक शब्द उलैना शब्द 12 बार और अचानक शब्द 11 बार किया, उसका कारण क्या है? मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हमारे ज्ञान में हम लोग कई बार कह देते हैं कि बाबा बहुत रिपीटेशन करते हैं, और 11 बार बोला अचानक शब्द, 12 बार उलैना शब्द बोला, इतने रिपीटेशन करने की क्या जरूरत है? इस प्रकार से कईयों के मन में ये भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि ये दो वस्तु अलग अलग है, एक रिपीटेशन जो है वो अलग शब्द है और दूसरा है हैमरिंग। हैमरिंग आप समझेंगे हैमरिंग क्या है, ये दीवार जो होती है ना, दीवार के अंदर एक कील ठोकना होता है, कील ठोकना होता है, हथौड़ी आपके हाथ में होती है, तो आपको हथौड़ी कितनी बार ठोकनी पड़ती है, 8-10 बार ठोकेंगे तो ही वो जो कील जो है वो दीवार के अंदर फिक्स हो जाएंगे। एक बार ठोकेंगे तो क्या हो जाएगा, जाएगा नहीं, गिर जाएगा, फालतू में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा भी ये दिमाग जो है ना वो दीवार जैसा ही है, पत्थर जैसा ही है। हाँ, पत्थर जैसे दीवार दिमाग जो हमारा कितना वो है, क्योंकि 5000 वर्ष के अंदर तमो प्रधान बन गया है हमारा ये मन बुद्धि संस्कार। इन मन बुद्धि संस्कारों को पावन करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है, और इस मेहनत के लिए उसको रिपीटेशन ना कहे, और इसके साथ रिपीटेशन शब्द कह करके हम हमारे प्यारे बाप दादा को उनका जो दिव्य पुरुषार्थ हमारे लिए है उसकी कीमत जो है, वैल्यू जो है, अंडर एस्टिमेट न करें। परंतु बाबा हैमरिंग कर करके हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमको जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसलिए सदा ही हमें उनका धन्यवाद मानना चाहिए। तो इस प्रकार से 12 बार उलैना और 11 बार अचानक शब्द जो बाबा ने यूज किया हुआ है उसकी इम्पोर्टेंस हम समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। पिछले सीजनों में बाबा मुरली चलाते थे तो उसमें यही बताते थे, चारों ओर के ऐसे आत्माओं के बारे में मिलने आया हूँ, इस प्रकार के चारों ओर की आत्माओं को शब्द के द्वारा अव्यक्त मुरली शुरू करते थे। इस सीजन के अंदर बाबा ने वो जो पुरानी जो ट्रेडिशन जो थी चारों ओर के बच्चों को, ऐसे सारी बातें बाबा ने छोड़ करके अब अलग अलग मुरली के शुरुआत में अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे कल बाबा ने बताया कि आज की सभा जो हमारी दैवीय परिवार बैठा हुआ था उसको बाबा ने सभा कहा, आज की सभा स्नेही और स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित दिखाई दे रही है। एक स्नेही भी है और दूसरा स्मृति स्वरूप है। स्मृति स्वरूप हम सब जानते हैं, हमारी स्मृति क्या है कि हम आत्मा है, हम परमपिता परमात्मा की संतान है, और बाबा ने ये भी कहा कि हम सबके मन में विश्व कल्याण का उमंग उत्साह समाया हुआ है। पीछे बाबा ने चाहे शब्द करके बोल दिया, चारों ओर के जैसे इस प्रकार से कह दिया, चाहे सन्मुख चाहे दूर है लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार दिल के स्नेह में समाया हुआ है। और ये जो मिलन जो है परमात्मा और आत्मा का मिलन की बात बहुत अच्छी रीति से बताई कि परमात्मा और आत्मा का मिलन का स्नेह, ये स्नेह अति प्यारा और अति न्यारा है। ये मिलन जो है परमात्मा से मिलने का, परमात्मा से सन्मुख में मिलने का, परमात्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का, ये बाबा ने कल ही कहा कि ये बहुत ही न्यारा है, संगम युग को ही ये वरदान मिला हुआ है। बाबा ने ये भी कहा कि बाप दादा हम सभी बच्चों को किस रूप से देख रहे हैं, देखो बाबा की दृष्टि क्या है और हमारे प्रति दृष्टि क्या है। बाबा की दृष्टि हमारे प्रति है कि बाबा बच्चों को समर्थ रूप में देख रहे हैं, समर्थ रूप में। और बाबा ने समर्थ का परिभाषा भी बताई कि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है, जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे पानी का ग्लास होता है, पानी के ग्लास के अंदर से हवा निकालने के लिए कोई कहे तो निकलना बहुत कठिन है, परंतु उसके अंदर क्या होता है, पानी डालो तो हवा निकल जाएंगे। इसी प्रकार से हम समर्थ बनेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हमारे जीवन से स्वतः ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ किस बात का करना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि व्यर्थ को समाप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कल ये बता दिया, रहस्य बता दिया कि समर्थ, अगर समर्थ हम व्यवहार, समर्थ हम विचार, समर्थ हमारा आचार आदि आदि जो भी हमारा श्रेष्ठ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ जो है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, समर्थ विचार, समर्थ व्यवहार, समर्थ कारोबार, इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर हमें अपने आत्मा को समर्थ बनाना, शक्तिशाली बनाना। हम शक्तिशाली बनेंगे तो हमारे जीवन के अंदर जो भी व्यर्थ बातें जो है वो सब चली जाएंगी। इसलिए बाबा ने क्या बोला, बहुत सुंदर बात आगे कही, समर्थ बाप और समर्थ बच्चे, यह समर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन अति न्यारा और प्यारा है और यह मिलन सिर्फ संगम पर ही हो सकता है साकार रूप के अंदर। तो बाबा ने आगे यही कहा है, परमात्मा और आत्माओं का यह साकार मिलन। द्वापर युग से क्या हो गया आप सब जानते हैं, द्वापर युग से भक्ति की शुरुआत हो गई और भक्ति की शुरुआत के साथ साथ परमात्मा का एक कर्तव्य शुरू हो गया। आप सबको मालूम होगा सतयुग त्रेता में तो परमात्मा का कोई कर्तव्य, दिव्य कर्तव्य तो हमें अनुभव नहीं होता था, परंतु द्वापर युग के बाद भक्ति की शुरुआत की और भक्ति के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार कराने का कर्तव्य शुरू हो गया। साक्षात्कार कराने का अर्थात इस प्रकार से दिव्य कर्तव्य, दिव्य अनुभव कराने का आस्ते आस्ते होता है, ऊपर वो भी सूक्ष्म में, स्थूल रूप में नहीं, स्थूल रूप में तो और बात हो जाती है। तो इसलिए साकार रूप में मिलने का जो अनुभव जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ संगम युग पर हो सकता है। इसके आधार पर समझ लीजिए कि संगम युग की महानता, श्रेष्ठता, दिव्यता कितनी श्रेष्ठ है। और ये मिलन का अनुभव जो है कोटों में कोई आत्मा, देखिए आज सृष्टि के अंदर 620 करोड़ या इतने लोग जो है, इसके अंदर हमारे 9-10 लाख बहन भाई जो है उसको ही ये अनुभव हो सकता है। इसका इसलिए बाबा ने क्या कह दिया, कोटों में कोई आत्माओं को भी ये साकार मिलन का अनुभव होता है। तो हम सब कितने सौभाग्यशाली है कि कल हमने प्यारे अव्यक्त बाप दादा को साकार रूप में अपने रथ के अंदर प्रवेश कर करके हम सबको मुरली के द्वारा हम सबको ज्ञान रत्नों से सजाया। और फिर से बाबा ने यही बात कही है, यह परमात्मा और आत्मा का मिलन कल्प में संगम पर ही होता है। और जिसको हमारे बारे में कितना पहले बाबा ने बता दिया समर्थ आत्मा, अब बाबा कहते हैं कि ऐसे वह सौभाग्यशाली, हम न सिर्फ सौभाग्यशाली है परंतु पदम भाग्यशाली आत्माएं ही परमात्मा से सन्मुख का मिलन मना रही है। अपने आप के बारे में हमारी अपने आप की स्व उन्नति के बारे में सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमको ये कहना ही चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं कि आप सौभाग्यशाली भी हो और पदम भाग्यशाली भी हो। आप गिनती कर सकते हैं सौभाग्यशाली क्या होता है, पदम क्या होता है। पदम मालूम होगा ना, पदम कितने किसको कहते हैं, संख्या शास्त्र जो जानते होंगे उनको मालूम है पदम का क्या अर्थ होता है। तो इसलिए पदम भाग्यशाली हम आत्माएं ही सन्मुख में मिलन मना रहे हैं। सबके दिल में बाबा कहते हैं यही मिलन का भाग्य प्राप्त होता है और सबके मन में मेरा बाबा मेरा और मेरापन है। फिर अभी बाबा ने इतनी प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड दे दिया और उसके बाद मेन टॉपिक जो था, मेन लक्ष्य के आधार पर बाबा ने जो मुरली चलाना था वो बाबा ने शुरू किया और कहा कि बाप दादा इस समय यही चाहते हैं कि और भी आत्माओं को, अन्य आत्माएं और भी मान अन्य आत्माओं को भी यह अनुभव कराओ। क्या अनुभव कराओ, देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अंत का पॉइंट क्या है वो बाबा बता देते हैं, फिर आगे और भी बताते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहे मेरा बाबा, मेरा बाबा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, अंत क्या है। तो कहा बाबा कहते उसको वर्षे का अधिकारी बनाना, वर्षा। आप सब जानते हैं हम सब यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए आए हुए हैं हम परमात्मा पिता से वर्षे का अधिकारी और अधिकार प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। तो इसलिए ये लक्ष्य बाबा ने बता दिया कि मेरा बाबा और वो स्टार्टिंग पॉइंट ये कहे और आखिर में वर्षे का अधिकारी बनाए। फिर बाबा ने एक बहुत ऐसी बात कही है जो अन्य धर्म शास्त्रों में भी आई है। बाबा ने कहा आज संसार में दुख अशांति, दुख और अशांति, आगे का शब्द जो है अल्पकाल का सुख फैला हुआ है वो शास्त्रकारों में कईयों ने नहीं बात कही हुई है। आप सबने गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का शास्त्र पढ़े हुए होंगे। बौद्ध धर्म के अंदर एक बहुत प्रख्यात डायलॉग है, संवाद है गौतम बुद्ध जी का और उनके पट्ट शिष्य सारनाथ का। सारनाथ का भी आप जानते हो विदिशा में आदि में उनका यादगार भी है। तो सारनाथ ने गौतम बुद्ध को एक सवाल पूछा कि गौतम बुद्ध जी आपने हमको बाकी सारी दुनिया का ज्ञान सुनाया। गौतम बुद्ध को सारनाथ पूछता है, प्लीज आप ध्यान से सुनिए। और उसने कहा कि प्रश्न पूछा कि आपने सारी दुनिया की बातें बताई परंतु ये बात नहीं बताई कि परमात्मा है या नहीं, अगर है तो कौन है, कहाँ रहता है, उसका दिव्य कर्तव्य क्या है। ये सारनाथ ने गौतम बुद्ध से पूछा और गौतम बुद्ध ने बहुत सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई उसका अपने सारनाथ जी इस दुनिया के अंदर दुख और अशांति और करुणा इतनी है और इस दुख और अशांति को दूर करने में ही मेरा समग्र जीवन का लक्ष्य है और इसलिए मुझे आगे का वाक्य ध्यान से सुनिए, इसलिए मुझे परमात्मा है या नहीं इस बात पर चिंतन करने की फुर्सत ही नहीं है। परमात्मा कौन कौन कहता है, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन, भारत की संस्कृति के दशा अवतार जो माने गए हैं उस दशा अवतार में से एक अवतार है गौतम बुद्ध। तो दशा अवतार में से एक अवतार परमात्मा का दिव्य अवतार, वो परमात्मा का दिव्य अवतार हम सबने उसको दिव्य अवतार बना दिया, परमात्मा का दिव्य अवतरण का रूप दे दिया और दिव्य अवतरण का रूप उसके बाद उसको जब पूछा जाता है कि परमात्मा है या नहीं तो क्या कहता है, इस दुनिया में दुख और शांति इतनी है, इसको दूर कर, करुणा इतनी है कि इसको दूर करने में मेरा समय व्यस्त रहता हूँ, और उसके कारण मुझे परमात्मा के बारे में विचिंतन करने की फुर्सत ही नहीं है। इस प्रकार से ये हमारे भारतीय आध्यात्मिकता की एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी मैं शब्द बोलता हूँ, ट्रेजेडी है कि जिसको हम परमात्मा का दिव्य अवतरण के रूप में दशावतार के दस अवतारों की लिस्ट में गिनती करते हैं, वही वही अवतार जो है, परमात्मा का अवतार जो है, वही कहता है कि मुझे परमात्मा है या नहीं उसके बारे में चिंतन करने की फुर्सत नहीं है। ये हकीकत है। हमारे दशावतार के अंदर उसके बारे में दस अवतार का आप देख लीजिए कि बहुत कॉन्ट्रास्ट भरा हुआ है। रामायण के समय में आप देखेंगे राम ने क्या किया, वो शिव धनुष जो है उसका भंग किया, और शिव धनुष का भंग हुआ और उसके बाद सीता स्वयंवर हुआ, अब आप सब जानते हैं। और सीता स्वयंवर के बाद मिथिला से राम और उसके सारा परिवार जो चारों भाई उसके माँ बाप सब जा रहे थे, तो परशुराम जी आ गए। आप रामायण सुना होगा, परशुराम को भी दशावतार में से एक अवतार माना गया है। परशुराम को जमदग्नि पुत्र परशुराम, जिसके बारे में कहा गया है कि 21 बार उसने ये पृथ्वी जो है नक्षत्रीय बना दी, क्षत्रिय का संहार कर दिया है। इस प्रकार से तो परशुराम जी जो है वो उसके सामने आ गए और राम को कहने लगे तुमने शिव धनुष तोड़ दिया, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो बहुत पुराना धनुष था, उसको तोड़ने में क्या बड़ी बात हो गई, मेरे पास ये विष्णु का धनुष है, विष्णु का धनुष के ऊपर तुम जो है धागा डोरी जो उसको पाणस कहते हैं उसको बांध के दिखाओ तो मैं मानू हाँ कि तुम परमात्मा का अवतार है। एक परमात्मा का अवतार दूसरे परमात्मा को रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं होता है, उसकी परीक्षा लेता है कि तुम बताओ, तुम ये करके दिखाओ तो मैं तुम मानू भाई तुम परमात्मा का अवतार हो। और राम ने हंसते हंसते धनुष ले लिया, उसके ऊपर पाणस के धागा जो है बांध करके दिखाया, और फिर उसके ऊपर अपना तीर जो है, बाण जो है, एरो जो है वो चढ़ाया। तब परशुराम जी कहते हैं कि अभी मैंने माना, तो राम कहते हैं कि अभी तो आपने माना परंतु मैंने तो मेरे धनुष के ऊपर वो एरो जो है, तीर जो है, बाण जो है चढ़ा दिया है, मैं अपना बाण को वापस नहीं कर सकता हूँ, तो आप कहो मैं वहां पर ही मेरा बाण भेजूं। तब वो सुंदरकांड जो है, सुंदर अपने गंगा नदी का और जमुना नदी जहाँ मिलती है समुद्र किनारे, वो जो वन जो है, वो एरिया जो है उसको सुंदर वन कहते थे, वो सुंदर वन के वहां पर लोग जो है अनिति इस प्रकार के रहते थे, तो परशुराम कहते हैं कि वहां के लोगों के ऊपर तुम्हारा बाण चलाओ। देखिए दो परमात्मा का दो अवतार एक ही समय पर सामने आमने सामने मिलते हैं परंतु तो एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। ऐसा ही होता है कृष्ण के जीवन में भी। देखिए कृष्ण के जीवन में भी परशुराम है, महाभारत के समय में आपको मालूम होगा पांडवों और कौरवों का गुरु था द्रोणाचार्य, वो तो मालूम है ना, सब कहानियां हैं। तो द्रोणाचार्य जो है वो परशुराम शिष्य थे, द्रोणाचार्य वो परशुराम शिष्य थे, और पांडवों का बड़ा भाई कर्ण जो था हाँ, जिसको सुतपुत्र के रूप में कुंती जी ने समुद्र के नदी के अंदर बास्केट एक उठा उसकी टोकरी के अंदर छोड़ दिया था, और वो सुतपुत्र के रूप में राधा के पास पहुंच गया था, और वो कर्ण जो है वो भी परशुराम के पास शिक्षा लेने के लिए चला गया था, और वहां पर जाकर के उसने बोला कि मैं तो ब्राह्मण हूँ। और इस प्रकार से परशुराम रामायण में भी थे, परमात्मा का एक अवतार, कितना लंबा अवतार हो गया, रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे, और वहां तो राम और परशुराम आमने सामने मिलते भी हैं, परंतु महाभारत के अंदर सारा महाभारत आप पढ़ लो, अनेक लोगों ने महाभारत लिखा हुआ है, किसी ने भी महाभारत के अंदर परमात्मा के ये दो जीवंत अवतार कृष्ण और परशुराम आमने सामने नहीं मिलते हैं। बताइए, इस प्रकार के दशावतार की बातें हैं, क्या क्या बातें हो सकती है, क्या क्या हो जाता है, हर प्रकार की बातों का आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसके पीछे में जो दिव्यता जो है, महानता है, वो हम समझ नहीं सकेंगे। कारण यही है कि जब ने लिखने वालों ने जो लिखा, एक ने एक लिखा, रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा, आप समझे मेरी बात को, रामायण वाल्मीकि ने लिखा और महाभारत जो है व्यास ने लिखा, तो इसके कारण लेखक अलग हो गए। जब लेखक अलग हो गए तो उनका लक्ष्य जो है वो भी अलग हो जाता है। और व्यास जी ने फिर रामायण, व्यास जी ने फिर गीता महाभारत में लिखी हुई है, आपको मालूम होगा उसका गीता का महात्मा में भी है, व्यास ने ग्रसिताम पुराण मुनिनाम मध्य महाभारतम, व्यास ने गीता का ग्रंथस्थ किया और महाभारत के अंदर उसको प्रक्षिप्त किया। 14 प्रकार की गीताएं महाभारत के अंदर है, एक नहीं। बाबा हम सबको कहते हैं ना, गीता का भगवान सिद्ध करो, तो मेरे मन में ये प्रश्न होता है कौन सी गीता का भगवान को सिद्ध करें, क्योंकि वहां उसमें ये भी है, शंकर गीता भी है, उसके अंदर भीष्म गीता भी है, उसके अंदर व्याघ्र गीता भी है, इस प्रकार से 14 प्रकार की गीताएं हैं। और उसमें कौन सी गीता, इसको हम जानते हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जो हुआ, उस गीता का भगवान कौन, वो बाबा बताना चाहते हैं। पर तो बाकी सब गीताएं जो है उसका भगवान कौन है, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं होता है। बाबा ने जो गीता के बारे में बताया हुआ है, और ये भी हकीकत है, आप सब गहराई में जाएंगे ना गीता के बारे में, जो बाबा ने कल भी ब्रिजमोहन भाई के साथ बात किया गीता का भगवान के बारे में, ये हकीकत यही है। जिन्होंने महाभारत के अंदर ग्रंथस्थ गीता जो है उसको पढ़ा होगा, 4 अध्याय में यही है कि इमं विवस्वते पुरा प्रोक्ता मया नदः, अर्थात हे अर्जुन, मैंने जो गीता का कर्मयोग और सांख्य योग जो आपको बताया, वो ज्ञान, ये गीता का ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इश्वाकु को दिया, और समय समय प्रमाण वो ज्ञान समाज में बहता रहा, बढ़ता रहा, और फिर क्या हो गया, वो ज्ञान प्रायलोप हो गया। और इसीलिए हे अर्जुन, मैंने तुझे आज वही गीता का ज्ञान फिर से सुनाया। और इसलिए हम लोगों ने एक ऐसे कॉम्पिटिशन किया था तिरुपति की, जो तिरुपति का बोर्ड जो है उसके साथ मिलकर के एक ऐसे कॉम्पिटिशन किया था कि आदि गीता क्या, क्योंकि 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि सबसे पहला मैंने ये गीता का ज्ञान सूर्य को दिया, तो जो सबसे पहले बार सूर्य को गीता का ज्ञान दिया गया वो ज्ञान कौन सा, और वो ग्रंथस्थ कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा होती रही। और इसके लिए हमने आदि गीता का कौन लेखक हो सकता है उसके बारे में सिद्ध करने के लिए रखा, और उसमें एक प्रोफेसर वीरकर करके जो थे अहमदाबाद अपने पुणे के, उन्होंने स्त्री पर्व से ही निकाल करके दिया कि आदि गीता क्या थी, ये जो गीता जो है ये तो पुनरावृत्ति की प्राप्त की हुई गीता है, आदि गीता क्या है, और आदि गीता परमात्मा ने खुद ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने वो आदि गीता जो है सूर्य को बताई थी, तो सूर्य को गीता बताई, इस प्रकार से सिद्ध करे तो गीता का भगवान कृष्ण के बदले में शिव पिता परमात्मा ही हो सकता है, क्योंकि सृष्टि की रचना करने वाला शिव पिता ही है, इस प्रकार की बात मनुस्मृति में भी लिखी हुई है। तो पर दुनिया की रचना करने वाला परमात्मा शिव है, और शिव के द्वारा जो गीता सुनाई गई वो आदि गीता है, वो गीता के 4 अध्याय से सिद्ध हो सकता है। और इस प्रकार के शास्त्रों की बातें हैं, कॉमन मैन तो इस प्रकार की बातों को समझने में असमर्थ होगा। परंतु एक बात ये भी है, कल मैंने नोट किया, बाबा ने जो कहा कि आज के संसार में दुख और अशांति, गौतम बुद्ध अल्पकाल का सुख के बारे में भी कोई कहता नहीं है, खाली दुख अशांति और करुणा आदि बहुत है, इस प्रकार से बातें करते हैं। परंतु बाबा ने क्या कहा, रिकग्नाइज किया कि अल्पकाल का सुख फैला हुआ है, अल्पकाल का सुख तो है, दुनिया वाले क्या मानते हैं, सुख को काग विष्ठा समान मानते हैं। शास्त्र प्रकार आप में से जिन्होंने भक्ति की हुई होंगी उनको मालूम होगा कि शास्त्रकार क्या मानते हैं, सुख को काग विष्ठा समान मानते हैं। और बाबा ने सुख को किस प्रकार से रिकग्नाइज किया, अल्पकाल का सुख फैला हुआ है, अब उनको सदा के सुख जो अल्पकाल का सुख की कॉन्ट्रास्ट में है, सदा का सुख शांति का थोड़ा सा अनुभव जरूर कराओ और इसी समय ही अनुभव करा सकते हो। क्यों? क्योंकि संगम युग का ये जो समय जो है उसको वरदान है, संगम युग के समय को वरदान है। क्या वरदान है? आत्माओं को परमात्मा से मिलन मनाने का संगम युग को वरदान है, आत्मा को परमात्मा से मिलन मनाने का। फिर बाबा ने जो ऊपर बात कही ना, मेरा बाबा और वर्षे का अधिकारी, जो एक आदि शब्द है मेरा बाबा और अंतिम स्थिति है वर्षे का अधिकारी बनना, उसके बारे में कहते हैं कि सारे कल्प में आत्मा परमात्मा का चार बातें बाबा ने बताई हुई है। स्टेप है, जैसे होते हैं ना सीढ़ी होते, सीढ़ी चढ़ने में स्टेप्स होते हैं ना, एक दो तीन चार, इस प्रकार से बाबा ने स्टेप्स बताए, चार बातों का स्टेप्स, वो समझने की जरूरत है उसको। मिलन, पहले मिलना होता है, कोई भी आदमी जाता है तो मिलते हैं, पहले तो मिलन होता है, फिर परिचय होता है, मिलने के बाद ही परिचय होगा, मिलेंगे नहीं तो परिचय कैसे होगा, फिर परिचय के आधार पर संबंध बनता है और संबंध के आधार पर फिर वर्षा इसी समय प्राप्त हो सकता है। तो ईश्वरीय सेवा का ये चार स्टेप्स है, बाबा ने इस प्रकार से इनडायरेक्टली हमको ज्ञान सुना दिया कि पहले मिलन होता है, किसी भी आत्मा से आप मिलो, फिर उनको परमात्मा का परिचय दो, फिर उनको सहयोगी बनाओ, सहयोगी से फिर वर्षे के रूप में राजयोगी बनाओ। तो इस प्रकार से मिलन, परिचय, संबंध और वर्षा इसी समय पर प्राप्त होता और फिर बाबा ने कहा कि हर बच्चे को, हम सब बच्चे कौन है, वो बाबा ने एक नया टाइटल हम बच्चे को दिया कि अधिकारी आत्मा है। हम सब कौन है? अधिकारी, हमारे पास वो अधिकार है, कौन सा अधिकार? परमात्माओं के साथ आत्माओं को मिलन मनाने का, कारोबार करने का और मिलन, परिचय, संबंध, वर्षा ये दिलाने का, प्राप्त कराने का अधिकार हमारे में है। इसलिए बाबा ने कहा कि अधिकारी आत्मा है और इसलिए हम आत्माओं को उन आत्माओं के ऊपर जो इस प्रकार के वंश परमात्मा का परिचय से कहो, परमात्मा से, परमात्मा का वर्षे के अधिकार से वंचित है, इसलिए बाबा ने कहा कि सभी, चाहे देश चाहे विदेश, कोई भी ऐसी आत्माएं परमात्मा का परिचय के बिना वंचित न रह जाए। और इसलिए फिर बाबा ने क्या किया, व्यक्ति के बदले में फिर एरिया कर दिया कि कोई भी प्रकार का एरिया ऐसे न रह जाए जो उलय ना दे। पहली बार आया उलय ना दे कि हमें परिचय नहीं मिला, सर्विस तो चारों ओर कर रहे हैं लेकिन कोई भी एरिया, आसपास के एरिया रह न जाए, उलय ना नहीं मिले। इस प्रकार से बाबा ने उलय ना शब्द को इंट्रोड्यूस किया और जैसे मैंने आपको बताया उलयना शब्द ट्वेल्व टाइम्स बाबा ने रिपीट किया हुआ है, आगे चल करके अचानक की बात आएगी, वो 11 बार रिपीट किया है, उलयना न दिया जाए। और ये सारा कार्य करने की जिम्मेदारी कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए भी बाबा ने हमारे सिर के ऊपर जिम्मेदारी का ताज पहना दिया कि यह जिम्मेदारी का ताज हमारे सिर पर रखने के लिए रखते हुए बाबा ने कहा यह जिम्मेदारी आप निमित्त बने हुए बच्चों की है। ये किसकी जिम्मेदारी है? सबको ये दे देने का, संदेश देने का, कोई उलैना न दे, इसकी जिम्मेदारी हम बच्चों की है, उलैना न दे, जहां तक हो सके वहां संदेश जरूर दो, नोट करो कौन सी एरिया रही हुई है, नोट करो कौन सी एरिया रही हुई है। इसके लिए हमें विश्व का नक्शा लेना पड़ेगा, विदेश के बहन भाई विदेश के सेवा केंद्रों का, स्थानों का, देशों का नक्शा देकर के प्रयत्न करें। भारत के बहन भाई क्या करेंगे, भारत के अंदर कौन सी एरिया जो है वो रह गई है, उस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करने की बात है। बाबा ने वो काम दिया हुआ है कि नोट करोगे कौन सी एरिया रह गई है और ऐसा प्रयत्न करो तो बोले ना मिले कि हमको पता ही नहीं पड़ा। इन सब को पता देने का बाबा ने फिर हमारे ऊपर हेवनिंग किया, इन सब के वो पता देने का कर्तव्य, पता देने का आपका कर्तव्य है। फिर बाबा कवि बन जाता है, बाबा के मूल्य में साहित्य भी होता है। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रियान करते हैं, इसमें से एक वाक्य में चार बार रूह शब्द आता है। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रियान करता है। इस प्रकार से कल बाबा, मैं हमेशा ही बाबा को कहता हूं कि बाबा आप साहित्य के स्वामी भी हो और ये स्पोकन लिटरेचर है, लिखत में लिखा हुआ ऐसा नहीं है। इसलिए देखो कैसे बाबा कहते हैं आपका कर्तव्य है, जाने नहीं जाने वह जाने। जाने शब्द तीन बार यूज किया हुआ एक ही वाक्य में, जाने नहीं जाने, कोई जाने कोई नहीं जाने, वह जाने, वो उनका भाग्य है। जाने शब्द जाने, उसके जानने के लिए तैयार भी हो जाए नहीं भी माने जाने, और क्या वह जाने मतलब उनका तकदीर। आप क्या फर्ज है, आप अपना कर्तव्य करो। तो कितना सुंदर शब्द है, तीनों बार जाने शब्द का अर्थ अलग अलग बाबा ने यूज किया हुआ है। जाने नहीं जाने वह जाने। भाषा के अंदर जो यहाँ जिन भाई बहनों को भाषण करने की और ट्रेनिंग लेने की इच्छा हो, इन्हों को इस प्रकार के साहित्यिक पोएटिक शब्द यूज करने ही चाहिए। पोएटिक शब्द यूज करते हैं तो सभा के अंदर, सभा के ऊपर बहुत ही अच्छी इम्प्रेशन बन जाती है। तो बाबा भी इस प्रकार से पोएटिक शब्द जो भी है वो यूज करते हैं। जाने नहीं जाने वह जाने, इसकी गहराई में जाइए। तीन बार शब्द यूज कर करके बाबा ने अलग अलग शब्द बार उसका उपयोग कैसे किया, और इसलिए फिर एरिया के बारे में चेक करने के लिए कहा। फिर बाबा ने जो ऊपर जाने न जाने अनजाने वो सारी बातें जो कही है ना, उसके बारे में बाबा कहते हैं कि भाग्य हरेक का खुद का है, आपकी फर्ज है उनको संदेश देने का, बाकी भाग्य उनका है माने न माने वो उनके हाथों में। भाग्य हरेक का खुद हरेक का खुद है, लेकिन संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का है। सुने नहीं सुने कुछ भी करें, देखो बाबा हम बच्चों को आदत भी दे देते हैं कि सामने वाला सुने ना सुने माने ना माने कुछ भी करे, उनका भाग्य वो है वो जाने। परंतु अगर उनका भाग्य नहीं है तो क्या कर सकते हैं, परंतु आपकी फर्ज है, आप भाग्यवान की फर्ज है कि उनको संदेश देना चाहिए। हमारा कर्तव्य संदेश देने का, और उसके अंदर जो बाबा ने बताया कि कहीं आत्मा अगर स्वीकार करे तो मिलन पीछे परिचय संबंध और वर्षे का अधिकारी बनाना। फिर बाबा ने कहा चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव हो शहर हो, संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का काम है। छोटी बात छोटा शहर हो छोटा गांव हो क्या कहाँ हो जाता है, कैसे जो हो जाता है। देखो हमारे ज्ञान की बात भी कैसी विचित्र है, कहीं छोटे गांव के अंदर जो कारोबार चलता है बहुत अच्छी ईश्वरीय सेवा होती है, और कहीं बड़े शहरों में सेवा बढ़ाने में आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा छोटे गांव हो चाहे बड़ा से गांव हो शहर हो, संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का काम है। और इसलिए बाबा ने फिर से याद कराया चेक करो कि कोई भी एरिया रह न जाए और उलहना भी मिल ना मिले। फिर बाबा ने हमारी हमने जो काम किया हुआ है उसको अप्रिशिएट किया। बाबा ने कहा कि मेजोरिटी मुख्य शहरों में तो आप बच्चे पहुंच गए हो, लेकिन फिर भी चेक कर लो कोई एरिया रह ना जाए। शहरों में पहुंच गए हैं, परंतु जो छोटे छोटे शहर एरिया गांव हो वहां पर पहुंचा है या नहीं। और क्या उलेना देंगे कि हमारा बाप आया और हमें पता नहीं पड़ा। इसलिए बाबा ने फिर से याद कराया कि चेक करो अपनी एरिया में कहां जहां तक हम पहुंचे हैं, और ऐसा कोई ऐसा एरिया ना हो जहां कोई पहुंचा भी नहीं हो। ऐसी एरिया में इस बाप का संदेश देने का कर्तव्य आप बच्चों का है। बाबा हम क्या करें, हम लोग अपने लौकिक कारोबार के अंदर ही इतने व्यस्त हैं। हम लोग हमारा 80% हमारा कारोबार समय जो है हमारे जीवन के लौकिक परिवार के लौकिक कारोबार लौकिक कमाई इसमें ही समय चला जाता है। तो हम ये संदेश देने का कार्य कैसे करेंगे, कब करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कोई छोटी भी एरिया हो आपके एरिया के नजदीक हो तो आप नोट करो, और छोटी छोटी एरिया वालों को आप इस प्रकार से उलेना से बचा सकते हो। हमारा बाप आया हुआ है ये उनको मालूम कराओ, संदेश दे दो। क्यों संदेश देना चाहिए, उसका बाबा ने लॉजिकल जवाब दिया हुआ है कि हमारा बाप है, हमारा परमात्मा हमारा बाप है। परंतु बाबा ने क्या कहा, हमारा बाप तो है परंतु परमात्मा सबका बाप है। परमात्मा सबका बाप है, इसको नोट कराया बाबा ने। इसलिए हमारी फर्ज है कि जो सबका बाप है उसका संदेश उसका परिचय सबको देने का है। और बाबा ने हमको वो भी आथक दे दिया। बाबा कहते हैं आपने संदेश पहुंचाया बस फिर आपकी जिम्मेवारी पूरी हो गई। संदेश पहुंचा है और फिर आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। इसलिए बाबा फिर से याद कराते लेकिन कोई भी एरिया है उसको चेक करो, किसी को भी भेज के कम से कम पता तो पड़े कि सबको वहां मतलब छोटे बहन जावे बड़े जावे कोई भी जावे कोई भी आत्मा जाकर के ये कार्य उठावे कि कोई भी एरिया में जाकर के संदेश देना चाहिए। छोटी एरिया में छोटे बहन भाई किसी को भी भेजो परंतु कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए। और बाबा ने पहली बार अचानक शब्द यूज किया कोई वंचित न रह जाए क्योंकि समय अचानक आना है, बता के नहीं आना है। समय अचानक आना है, हम लोग जानते हैं विनाश की बात समझते हैं परंतु समय अचानक में बहुत सी बातें हो सकती है, बहुत सी बातें अचानक होने वाली है। सिर्फ विनाश की बात नहीं, विनाश तो एक्सट्रीम स्टेप है, उसके पहले अनेक प्रकार की बातें हो जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए, बाबा ने इसलिए कहा समय अचानक आना है, कह करके नहीं आएगा। तो अचानक शब्द बाबा ने पहली बार यूज किया और उसके बाद 11 बार रिपीट किया है। बाबा ने कहा कि साथी एरिया उनको भी बताने एरिया में तो जो साथी एरिया वाले हैं उनको बता करके उनको भी निमित्त बनाओ। कई सेंटरों के अंदर आप जानते हैं नजदीक नजदीक में सेंटर होते हैं तो आपस में मिलजुल करके, इसलिए बाबा ने कहा हाँ कि साथी एरिया जो है एक ही शहर में बहुत से सेंटर्स होते हैं, इसलिए बाबा ने इसका यूज किया शब्द साथी एरिया वालों को भी अब बता करके उनको भी निमित्त बनाओ, साथ में मिलकर के कार्य करो। बाप का गंदा संदेश देने का कार्य हम सब का है, इसके अंदर ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष ये सब कर नहीं आना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा आपस में क्या करो कैसे करो सेवा, साथी बना करके निमित्त बनाओ, साथी बनाओ उनको और फिर संदेश दो कि किसी को भी संदेश देना रह न गया। और फिर बाबा ने कहा, संदेश देना आपका कर्तव्य है, बाकी उनका भाग्य। सारी दुनिया 600 करोड़ लोग जो 620 करोड़ जो है, सबको संदेश मिल जाए तो क्या हो जाएगा? सभी सत्युग में आ जाएंगे तो कलयुग और सत्युग में फर्क क्या रहा? इसलिए बाबा ने कहा, संदेश दे दो, बाकी क्या है, उनका भाग्य, स्वीकार करे ना स्वीकार करे उनके हाथों में है। और क्या होगा, विनाश के टाइम पर वो सब कहेंगे कि परमात्मा आप आए, आपका संदेश हमको मिला, परंतु हमने आपका संदेश को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार का खुद अपने भाग्य के ऊपर रोना शुरू करें, नहीं तो क्या हो जाएगा, उलैना कहेंगे हे परमात्मा आप आए और हमको आपका परिचय नहीं मिला, ऐसा कह सकते हैं। उसके मध्य में क्या हो जाएगा, वो अपने भाग्य पर रोएंगे, ये परमात्मा आपका संदेश मिला कि आपका दिव्य अवतरण इस सृष्टि पर हुआ है, परंतु हमने आपके संदेश को स्वीकार नहीं किया, संदेश को छोड़ दिया और अपना भाग्य बनाना छोड़ दिया। बाबा ने कहा, ये संदेश देने का, बाबा ने फिर से याद कराया, ये लोगों को संदेश देने की आपका आपकी फर्ज है, फर्ज है। क्यों? कि कोई भी हालत अचानक किसी समय आ सकती है, कोई भी हालत अचानक विनाश के अंदर कोई भी शरीर कभी भी छूट सकता है, कहां से एक सेकंड में शरीर छूट जाएगा। हमारे मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं, मैं बीमारी के कारण अहमदाबाद की हॉस्पिटल में था, मेरी लौकिक बहन बड़ी बहन वहां मेरे पास ध्यान रखने के लिए आई हुई थी, और मैं बीमार तो मैं था और बहन को तो कुछ नहीं था, और एक सेकंड में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अचानक कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से अचानक बहुत सी बातें हो सकती है, एक्सीडेंट हो जाए, क्या क्या हो सकता है। आजकल यहाँ पर नजदीक में भी, कल रात को भी आपको मालूम रहे, हमारे ट्रॉमा सेंटर की एम्बुलेंस आ रही थी, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। तो इस प्रकार से एक्सीडेंट अचानक कुछ भी हो सकता है। बाबा ने कहा, इसलिए अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप क्या करो, बाबा ने कहा आप अपनी फर्ज पूरा करो। फर्ज कौन सी? संदेश देने की फर्ज, ये हमारी फर्ज है। जो मैंने कहा ना, साकार मुरली में बाबा ने कहा था, गुरु दक्षिणा में मुझे यही चाहिए कि सबको बाप का संदेश मिल जाए। इसलिए बाबा के अपनी फर्ज पूरा करो, किसी को भी भेजो, परंतु एरिया कवर करो, कोई ओलेना ना दे। फिर बाबा ने अचानक की बात कही, कोई अचानक कुछ भी खिटपीट शुरू हो सकती है। देखो बाबा ने अभी क्वालिफाई किया, आज रतनमयी दादी ने भी अचानक के बारे में विनाश के साथ संलग्न किया। बाबा ने विनाश के साथ हर बात में संलग्न नहीं करते हैं। बाबा ने इसी कहा, अचानक कुछ भी खिटपीट शुरू हो सकती है, छोटी बड़ी बातें हो सकती है, इसलिए विनाश तक इंतजार क्यों करें, छोटी छोटी बातें भी हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहा कि अचानक कुछ भी खिटपीट शुरू हो सकती है। बाबा के महावाक्य को उसी दृष्टिकोण से समझना चाहिए। और फिर आपस में झगड़ा न हो, ईर्ष्या द्वेष न हो, इसलिए बाबा ने कहा अगर दूसरे की एरिया है तो उससे राय करो, दूसरे की एरिया है उससे राय करो, और ऐसे राय के बिना कुछ कार्य नहीं करो, राय करो और फिर अपना कर्तव्य पूरा करो। योग करेंगे 3 मिनट।
विकराल विनाश खड़ा आगे
शांति। बाबा ने सेवा के अंदर भी सावधानी रखने के लिए कहा हुआ है, वो दूसरे की एरिया है तो उसे राय करो, ऐसे बिना राय कोई भी कार्य नहीं करो, राय करो और अपना कर्तव्य पूरा करो। तो ये तरीका बाबा बताते हैं, राय करके आपस में मिलन करा, मन का मिलन मना करके एक दूसरे के सहयोगी बन करके कार्य करना है, एक दूसरे के परस्पर विरोधी बनकर के कार्य नहीं करना है। ये बहुत सेवा के फील्ड में आप जानते हैं कई बार ये प्रश्न हो जाता है। हमारे बॉम्बे के अंदर भी एक बार एक ऐसा ही हो गया, कोई सिस्टम नहीं थी तो क्या गवर्नर के पास 5-6 लोगों का राखी बांधने का प्रोग्राम पत्र मिल गया, मिला कि हम आपको राखी बांधने के लिए आ रहे हैं। तो गवर्नर के पीए ने हम लोगों को फोन करके कहा कि आप में कोई सिस्टम नहीं है, ये राखी तो एक ही बांधेंगे, 5-6 सेंटर वाले 5-6 लोग आकर के राखी कैसे बांध सकते हैं। सिस्टम बननी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी और डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए सिस्टम बनानी चाहिए, वो बाबा ने कहा। हाँ, बिना राय के नहीं करो, राय करो और पूरा करो, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। फिर बाबा ने कहा राय करो और बड़ों से उस द्वारा भी काम कराओ कि क्या रह गया क्या नहीं रह गया, बड़ों के साथ भी राय करो। हाँ, ऐसा न हो कि हम ही अपने आप को बड़ा समझे, ऐसा नहीं, और जिसको यज्ञ ने बड़े समझा है उनके साथ भी राय कर करके कारोबार कर सकते हैं। बाबा ने फिर याद कराया, मीटिंग भी करते हो, अभी अप्रैल महीने में मीटिंग आने वाली है, तो मीटिंग के अंदर भी एक दूसरे से राय करो। फिर भी बाबा देखो क्या करते, राय करो राय करो राय करो, इस प्रकार से आपस में सलाह मशवरा करने के लिए ही कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहे, ये मेरा एरिया है, तेरा एरिया है, मेरा तेरा का भाव ना आवे, इसलिए बाबा कहते एक दूसरे से राय करो। क्योंकि बाबा फिर से याद कराता है, क्योंकि समय अचानक आना है, इसलिए उसके पहले ये कार्य संपन्न करो। फिर हम बच्चों का एक संस्कार के बारे में बाबा ने व्यंग किया हो, व्यंग आप समझते हैं, व्यंग किसको कहते हैं, उसके ऊपर जैसे कार्टून ड्रॉ करता है ना, उसको व्यंग चित्र कहते हैं। इस प्रकार से शब्द का व्यंग बाबा ने किया हुआ है। और क्या व्यंग किया, जो हमारी एक कमजोरी जो है ना उसके ऊपर बाबा ने व्यंग किया है। कर लेंगे, हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, हो जाएगा। गेंग 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 करने का जो अभी तो मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, ये गेंग गेंग ये सब करने का, यह किसी का संस्कार होता है। हो जाएगा, उसमें क्या है, हो जाएगा, कर लेंगे। हाँ, अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से जिम्मेदारी निभाने का बहुतों के पास एक अक्ल नहीं होती, अनुभव नहीं होता है। यही बाबा ने व्यंग किया, कहीं समझते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ, ऐसा ऐसा जो है, जिसको कहे बात को पोस्टपोन करने का, तो बाबा ने कहा यह कोई का संस्कार होता है। इसलिए बाबा ने कहा इस संस्कार के आधार पर ये आपका संदेश देने का कार्य जो है, बाबा कहते हैं रह न जाए। इसलिए बाबा सभी को इशारा दे रहे हैं। हाँ, कोई नहीं करने वाला होगा तो नहीं करें, आप हम अपने हम तो अपना कार्य करें। और बाबा ने क्या कहा, अगर दूसरा कोई करने चाहे तो उससे भी कराओ। आपस में कॉम्पिटिशन नहीं करो, कहता ठीक है मैं इस एरिया में संभाल लेता हूँ, तो बाबा ने कहा उससे भी कराओ। क्योंकि आखिर में क्या है, समय पर कोई भी भरोसा नहीं है। और छोटी छोटी बातें, विनाश की बात तो दूर रही, बाबा विनाश की बात कल नहीं कहते, अचानक के समय पर बाबा ने फिर से कहा छोटी छोटी बातें तो अचानक होती ही जाती है, अचानक ही छोटी छोटी बातें हो जाती है, ट्रेन बंद हो जाती है, क्या क्या होता है। अभी देखो दिल्ली के अंदर फॉग बहुत हो गई, हाँ तो कितना प्लेन डाइवर्ट करने पड़े। अमेरिका के अंदर 6 स्टेट्स के अंदर ठंडी के कारण बर्फ अभी इतना हो गया कि 6 स्टेट्स के अंदर इमरजेंसी दाखिल करने पड़ी, और फ्लाइट्स बंद हो गई, क्या क्या हो गया। तो इस प्रकार से अचानक का कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा छोटी छोटी बातें, हम बड़ी बातों को ही समझते, विनाश 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 की ही बातें समझ लेते हैं। बाबा ने हमारा अटेंशन छोटी छोटी बातों के ऊपर भी खिंचवाया, छोटी छोटी बातों का अचानक हो ही जाता है। और इसलिए अपने एरिया के अंदर संदेश दो और कोई उलेना न दे। ये छोटी छोटी बातें अभी अचानक हो सकती है, उसकी बात है। फिर बाबा ने हम बच्चों की सराहना की हुई है कि बाप, आप सभी बाप के सिकिलदे बच्चे, जो बाप के बन गए वह कितने सिकिलदे हैं। सिकिलदे शब्द सिंधी शब्द, सिकिलदे में बहुत समय के बाद मिले हुए ऐसे अनमोल रत्न जो होते हैं, ऐसे हम बच्चे बाबा के हैं। सकीलदे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं, और बाप कहते भी हैं वाह बच्चे वाह। फिर अभी सावधानी देना शुरू किया, अब तक ऊपर जिम्मेदारियां ये सेवा करने का ये सारी बातें, अब सेवा के साथ सावधानी की बात कही है। बाबा ने पहला शब्द यूज किया है महावाक्य में कि पुरुषार्थ में थकना नहीं। कौन सा डायरेक्शन दिया, पहली बात स्वभाव के पुरुषार्थ की बात कही है, पुरुषार्थ में थकना नहीं। क्यों, कि पुरुषार्थ में भी छोटी मोटी बातें आती है, और अगर बातें आ गई तो बाबा कहते मदद लो। बातें कोई आ गई तो उसके लिए राय सलाह के लिए दादियां दीदी आगे बता दे, दादियां है दादा है सबसे राय करो। बाबा ने कहा है मदद लो, मदद लो। परंतु कईयों के अंदर बहुत, जिसको लौकिक दुनिया के अंदर शब्द यूज कर अभिमान होता है, स्वाभिमान होता है कि हम तो कोई औरों से कम नहीं है, हम क्यों किसी को पूछने को जाए। ऐसे अभिमानी बाबा बच्चे को बाबा ने कहा है अगर ठीक है आप और किसी से मदद नहीं लेना चाहते हो तो योग बल से चेक करो। जो भी छोटी छोटी बातें आई उसके लिए योग बल से चेक करो, और उसका कोई न कोई सहयोग ढूंढो। अर्थात समस्याएं जो छोटी बड़ी आती है उसको दूर करने का कोई न कोई कारण ढूंढो, और कारण के आधार पर कारण ढूंढ के उसके आधार पर पुरुषार्थ करो। इस प्रकार से बाबा ने अपने लिए सावधानी बताई। फिर बाबा ने एरिया के बारे में कहा कि क्यों एरिया में कोई रह न जाए। बाबा ने फिर कहा आप बच्चे सोचेंगे आज बाप दादा ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाबा ने कहा कि बाप दादा ने देखा ऊपर बैठे बैठे क्या करता है बाबा। बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चों की नजदीक के एरिया जिनकी जिम्मेवारी है उनकी नक्की पूरी नहीं कर दी है। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाऊं। बॉम्बे से पद यात्रा चली, बॉम्बे से पद यात्रा चलती चलती दिल्ली तक गई। बॉम्बे के नजदीक में जो कसारा आदि जो है गांव है वहां पर जब बहने गई तो सबने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं है, हमको आपका संदेश नहीं मिला, आप अमेरिका जाओ इंग्लैंड जाओ सब जगह पर जाते हो, हम आपके बॉम्बे के नजदीक है फिर भी हमारे पास आप नहीं पहुंचे। इसलिए बाबा कहते हैं कहीं नजदीक के एरिया बाबा ने कहा पूरी नहीं किया हुआ है, अपनी जिम्मेदारी नजदीक के एरिया वालों को संदेश देने की जिम्मेदारी पूरी नहीं किया, इसलिए बाप दादा आज इशारा दे रहे हैं कि कोई भी एरिया रह न जाए। उनके एरिया को कोई अगर और किसी की भी एरिया है आप देखो और उनके एरिया को भी चेक करो और उनको भी पुरुषार्थ में चला करके उसके अंदर भी क्या करें, उमंग उत्साह भरिए। बाबा ने कहा ये सब क्यों कहता हूं मैं, बाबा ने कहा कि कोई भी ज्ञान सुनेगा कि मेरा बाबा या बाबा का बाप को स्वीकार करने में, बाबा कहते इसे पुरुषार्थ में चलने में टाइम तो लगेगा और इसलिए आगे अभी संदेश देंगे तो आस्ते आस्ते समय पर विनाश के समय तक वो तैयार भी हो जाएगा, वर्षे का अधिकारी भी बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं इस प्रकार से संदेश जिसको मिला उसको भी आगे का पुरुषार्थ करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। लास्ट मिनट पर आप कहेंगे परमात्मा आया हो, विनाश का घड़ी घंटी बज रही है और उसको कहो परमात्मा आया हुआ है तो क्या होगा, उसको कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं उसको भी पुरुषार्थ करने का टाइम चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं आप एरिया को चेक करो, अगर सर्विस करने वालों की मदद चाहिए तो फिर बाबा ने जोन को भी याद किया तो अपने जोन को भी बोलो कि वह भी मदद करे, आपस में जोन वाले जो है राय करे, जैसे अभी पंजाब के बहन भाई आए हुए हैं तो आपस में राय करके कि पंजाब का कौन से एरिया रह गया है और इस प्रकार से जोन आपस में एक दूसरे का सहयोग से काम करें। फिर बाबा ने सेवा के साथ और इशारा देना चाहता है, बाबा ने कहा और ये क्या इशारा दूं, बाबा का इशारा है स्वयं को संपन्न बनाने का। ये सेवा सेवा तो बात होती रही बाकी क्या है, स्वयं को संपन्न बनाने का। और बाबा ने हमारी गलती जो है कमजोरी जो है उसके बारे में ध्यान खिंचवाया है, ऐसे नहीं कि सेवा में इतने बिजी हो जाओ को स्वयं को देखने का समय नहीं मिले। जैसे मैंने आपको बताया ना गौतम बुद्ध को पूछा गया भगवान है या नहीं, तो कहा मैं इतनी सेवा में दुख अशांति दूर करने में इतना व्यस्त हो गया हूँ मुझे परमात्मा है या नहीं, इस प्रकार की बातें उसने कही। इस प्रकार से हमारे भी कई बहन भाई कहते हैं हम सेवा में इतने बिजी रहते हैं पर सेवा 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 ही है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही हुई है, जिन्होंने नोट किया होगा उनको मालूम होगा कि सेवा का स्थान कौन सा नंबर पर है। सेवा का स्थान चार सब्जेक्ट है आप सब जानते हैं, ज्ञान योग धारणा और सेवा। सेवा का स्थान कहाँ पर है, चौथे नंबर पर। पहला स्थान किसका है, ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान के आधार पर स्वयं को संपूर्ण बनाएंगे, ज्ञान और योग और उसके आधार पर धारणा होंगी उसके आधार पर हम संपूर्ण बनेंगे। और चौथे नंबर पर सेवा है, पर सब कई लोग क्या कर देते सेवा को पहले कर देते हैं। इस प्रकार से एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर सवाल पूछा हुआ है, पोएटिक कवि के रूप में सवाल पूछा हुआ है, बहुत सुंदर सवाल पूछा हुआ है कि आप नदी हो या तालाब हो। बाबा ने सवाल पूछा हुआ है आप नदी हो या तालाब हो, दोनों का कनेक्शन सेवा के साथ है। नदी भी सेवा करती है परंतु उसका लक्ष्य क्या है, मेन प्रिंसिपल लक्ष्य क्या है, समुद्र में जाकर के मिलन करना मनाने का, मतलब स्वयं को संपूर्ण बनाने का लक्ष्य नदी का है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ जो होता है उसके सब जैसे नदी बहती है समुद्र के मिलने के लिए जाती रहती है और उसके जो दोनों किनारे जो होते हैं बैंक्स ऑफ द रिवर जो होते हैं उसके अंदर जो लोग उसके ऊपर रहते हैं उसको पानी पिलाना उसके मदद करना ये सब सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है और तो मेन ऑब्जेक्ट तो नदी का क्या है स्वयं को संपन्न बना करके समुद्र के अंदर मिलन हो जाना। और तालाब का क्या लक्ष्य होता है? तालाब आगे बढ़ता ही नहीं है, तालाब वहां का वहां ही रहता है। तालाब कहते हैं कि ठीक है हमारा जीवन तो लोगों की सेवा में ही पूरा हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा हाँ तालाब, कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं तालाब के माफी के, और वो आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं, सेवा करते रहो सेवा करते रहो सेवा करते रहो। और जैसे वो होता है ना, बाबा ने दूसरी बात भी कही हुई, कोलू का बेल घूमता ही रहता है घूमता ही रहता है घूमता ही रहता है। इस प्रकार से हमारे बाबा के कई बच्चे जो है सेवा रूपी कोलू का बेल बन करके कार्य करते हैं। बाबा ने इसलिए कल उनको भी कहा कि सेवा में इतने बिजी न हो जाओ को स्वयं को देखने का समय नहीं मिले। इसलिए बाबा ने कहा पहले स्वयं को देखो और समय को भी देखो, स्वयं को देखो और समय को देखो और फिर सेवा करो। फिर बाबा ने इतना स्ट्रांग कहने के बाद थोड़ा मलम पट्टी किया, सभी खुश मिजाज तो रहते हो ना, खुश मिजाज नहीं रह सकते हो तो जिसमें फेथ हो जिसके अंदर भावना हो उससे सहयोग लो, क्योंकि बाबा दादा जानते हैं छोटी छोटी बातें जीवन के अंदर पुरुषार्थ के अंदर कभी भी आ सकती है। इसलिए अपने को अलर्ट रखना अपना फर्ज है। कोई कितना भी कहे बाबा ने सावधानी दे, कोई कितना भी बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, अरे कुत्ता होता है भौंकता ही रहता है उसमें बोलता रहेगा, भगवान का कुछ भी कहे, परंतु स्वयं को अलर्ट रखना ये स्वयं की फर्ज है। हमको अपने बारे में अपने पुरुषार्थ के बारे में अपने जीवन पर परिवर्तन करने के कार्य में अलर्ट रहना ये हमारी फर्ज है। इसलिए बाबा ने दोनों का बैलेंस रखने के लिए इसलिए बाबा ने कहा हुआ है सेवा और स्वयं दोनों को एवर रेडी करने का आज इशारा दे रहे हैं। स्वयं को भी संपन्न बनाओ और सेवा को भी संपन्न करो कि कोई उले ना दे दे वे। इस प्रकार से संपन्न करने का कारोबार बच्चों को करना ही है। तो सेवा और स्वयं दोनों को एवर रेडी करने का इशारा दे रहे हैं। ये एवर रेडी की बहुत एक अच्छी कहानी है। एक बार क्या हो गया, हमारी मोहिनी बहन जो है ना वो बाबा के पास गई थी, तो बाबा ने मोहिनी बहन से पूछा कि बच्ची तुम एवर रेडी हो? तो मुन्नी मोहिनी बहन ने जवाब दिया बाबा मैं तो एवर रेडी हूँ बाकी। तो बाबा ने कहा कि औरों के बारे में क्या विचार है? पानी तो दिखाई नहीं आज। तो दादी मोहिनी बहन ने कहा वो औरों के बारे में तो दादी हमारी बैठी है उनसे आप पूछो। तो दादी जी को बाबा ने इमर्ज किया, दादी प्रकाशमणि को, और बाबा ने दादी को पूछा कि मेरे सभी बच्चे एवर रेडी है? तो दादी ने बहुत युक्तियुक्त जवाब दे दिया, सबको खुश कर दिया। बाबा दादी ने कहा कि बाबा सब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार एवर रेडी है, सब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार एवर रेडी है। कल की भी बात बाबा ने जो कही ना कि बाबा कहते हैं कि स्वयं और सेवा के बीच में उसको एवर रेडी रहने का बाबा इशारा दे रहे हैं। एवर रेडी और क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं संतुष्टता का वायुमंडल हर स्थान पर होना चाहिए। संतुष्टता नहीं होगी, जहां संतुष्टता नहीं होगी वहां कितनी भी सेवा करो क्या हो जाएगा? तो तत्ते के ऊपर पानी डालो तो क्या हो जाएगा? हवा उड़ जाएगा। इस प्रकार से कितना भी करो असंतुष्टता जो होगी, अशांत से सुखो कता भर्तृहरि ने भी कहा अशांत से सुख कत अशांत जो होता है, जिस मन में अशांति होती है उसको सुख कितना भी सुख दो सुख उसको होगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अगर किसी भी प्रकार की असंतुष्टता हो तो किसी से भी सहयोग, क्योंकि छोटा छोटा या बड़ा से बड़ा लेकिन सबको पावरफुल जरूर बनना है। सहयोग लेकर के करो, छोटी छोटी बातें बड़ी बातें जो भी आए इन सब के सब सहयोग लेकर के क्या करो, अपने आप को पावरफुल जरूर बनाना है। क्यों क्यों फिर बाबा ने कहा आज, इसलिए इस बात के वो इशारा देते हैं कि अचानक के लिए तैयार रहो। और फिर अपने हम बच्चों के लिए कहते हैं, हाँ ऐसा कोई कहे नहीं कि पता नहीं था, पता नहीं था, ऐसा आप कोई कहे नहीं, कहीं नहीं कहो नहीं। बाबा कहते हैं सबको पता है, होना ही है और होगा, होना ही है और होगा अचानक होगा। आज जैसे रत्नमयी दादी ने भी क्लास में कहा, बाबा ने कहा आप सबके मन से हल्का हो जाएंगे तब तभी होगा, इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं। और अपने आप को चेक करो, फिर बाप समान बनने की बात आई। हम सबकी इच्छा है बाप समान बने, तो बाप समान कैसे बनेंगे उसका बाबा ने रहस्य बता दिया। बाप समान बनने के लिए क्या करना चाहिए, जो बाप चाहता है वो गधा धारण करो। और बाप समान बनने में क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या धारण करना चाहिए बाबा के, उसमें तो सब होशियार है, इन सब में सब होशियार है। तो अब इन जो भी बातें जो है बाप समान बनने के लिए, पांच बातें बाबा ने कही, मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क, ये पांच बातों में ऐसी अवस्था हो जो कुछ भी अचानक हो तो उसका सामना कर सकेंगे। हमारी मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क ऐसा श्रेष्ठ हो, इतना पावरफुल हो, ऊपर बाबा ने जो कहा कि कोई भी अचानक की बात आ जावे तो उसका हम सामना कर सकेंगे। वो सामना करने के लिए किस बात की जरूरत है, बहुत सुंदर बाबा ने शब्द यूज किया हुआ है, इंटरनल पावर, इंटरनल आत्मिक शक्ति, इंटरनल पावर आत्मिक शक्ति, वो सदा हमारे में रहे, इस बात का अटेंशन रहे। और इसलिए क्या करना चाहिए, बाबा ने उल्लेख न दिया इंटरनल पावर सदा साथ में रहे, इसलिए बाबा ने कहा कि सदा इंटरनल पावर कोई ना समझे करे, इसलिए बाबा ने सहज शब्दों में कह दिया सदा तीव्र पुरुषार्थी रहो, सदा तीव्र पुरुषार्थी रहो। और क्या करो, स्व परिवर्तन और चारों और भी परिवर्तन में सहयोगी बनने में दोनों बातों में चेक करो, स्व परिवर्तन और चारों ओर की दुनिया में जो लोग जो है उसके भी परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनो। स्व का परिवर्तन का भी कार्य का लक्ष्य रखो, दो बातों का बैलेंस है, एक में स्व परिवर्तन और एक दूसरा चारों ओर के लोग जो है उनके भी जीवन में परिवर्तन, इन दोनों बातों में चेक करो। फिर बाबा ने हाथ उठाया, ओके 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 है, इस प्रकार से तीन बार बाबा ने ओके ओके शब्द कहा। अच्छा बाप दादा आगे का हाथ तो देख रहे हैं, पीछे का नहीं दिखाई पड़ता था, तो बाबा ने उनको उठाया और उनका हाथ लंबा करवाया। बाबा ने फिर क्या कहा, ऐसा कोई नहीं सोचे कि हमको तो बाबा का प्यार का पता ही नहीं। और बाबा ने सारी सभा के सवाल पूछा, ऐसा कोई यहाँ पर बैठा हुआ है जिसको परमात्मा प्यार क्या है, परमात्मा का प्यार क्या है उसका पता नहीं, कोई है? तो कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। फिर बाबा ने कहा अच्छा पता वाले का हाथ उठाओ, तो सबने हाथ उठाया, तो और लंबा भी हाथ करो। फिर बाबा ने देखा कि कईयों ने हाथ उठाया तो कईयों ने, और तो मेजोरिटी ने हाथ उठाया, कोई ने हाथ नहीं उठाया। बाबा ने कहा कोई बीच में हाथ उठाए बिना रह गया होगा। अगर कोई इस प्रकार से समझे कि हमको परमात्मा का प्यार क्या है मालूम नहीं, समझ नहीं है, तो बाबा ने कहा कोई अंदर में ऐसा समझता है और हाथ उठाने में शर्म आती है, या अगर कोई विघ्न है या कोई हलचल है, तो अपने दादियों का, दादियों को या जिसमें आपका फेथ हो, बड़ी दादी या दादियां को सुना दो, रखना नहीं। कोई भी बात होती है, अगर बात में रखे बीज होता है ना, अंश होता है वहां वंश हो जाता है, और अंश होता है वहां वंश होता है, इसके कारण क्या होता है, अंश होता है वहां वंश हो जाता है। इसलिए अगर कोई भी बात की हलचल हो, कोई भी बात की कमी पेशी, कोई भी बात का दुख हो, कोई भी बात की अशांति हो, उसको बात अपने दिल में मत रखो, परंतु सहयोग लेकर के उसको दूर करो, रखना नहीं। भगवान का कोई न कोई इलाज लेकर के उस प्रकार उसको दूर करिए। क्यों फिर से बात भगवान का, क्योंकि जो भी होगा अचानक होगा। बाबा ने भी चेक करने की कारोबार बताई, चेक करने के लिए बहुत सुंदर बात कही है, आप सबने ध्यान से सुना होगा। बाबा कहते अभी चेक करो, कुछ भी अचानक हो जाए, सभी चेक करें, कुछ भी अचानक हो जाए तो इतनी शक्ति है कि स्वयं को उस अचानक की परिस्थिति में बचावे। समय अपने में इतनी ताकत है, अचानक के कारण जो भी समस्या आएंगी, जो भी परिस्थितियां बनेंगी, उसके अंदर अपने को बचाने का बाबा की इतनी शक्ति है। और न सिर्फ शक्ति की बात है, पर अचानक के कारण जो बना हुआ है वायुमंडल जो है, उसके ऊपर भी प्रभाव डाल सकते हो। प्रभाव डाल सकते हो और ऐसे समय पर औरों को मददगार बन सकते हो। एक तो स्वयं की रक्षा कर सकते हो, और फिर वायुमंडल के ऊपर प्रभाव डाल सकते हो, और उस समय पर जो और उलझनों में फंसे हुए होंगे उसको मदद कर सकते हो। बाबा ने कहा सबने समझा, और बाबा ने हम बच्चों को टाइटल भी दिया, समझदार तो सभी बहुत है। बाबा को आपकी समझदारी अच्छी लगती है, बाबा ऐसे ही नहीं कहते कि आप समझदार हैं, परंतु फिर कर करके बाबा ने परंतु कर दिया, समझदार तो हो लेकिन बहुत खतरनाक। मैं हमेशा ही कहता हूँ बाबा की मुरली में परंतु और लेकिन शब्द आता है ना, बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसके बाद की बातें बहुत हमारे ऊपर होती है। बाबा कहते हैं लेकिन कभी कभी समय पर थोड़ा समय लगा देते हो। बाबा ने उसका मिसाल भी दिया कि कार चलाते हो आपको समय पर ब्रेक लगानी है, और समय पर आपने ब्रेक नहीं लगाई तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद ब्रेक लगाओ तो उसका फायदा क्या, समय पर ही ब्रेक लगनी चाहिए, बाकी नहीं लगाएंगे तो क्या फायदा, ब्रेक समय पर लगनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि समय पर थोड़ा टाइम लगा देते हो, मतलब ब्रेक लगाने में टाइम लग जाता है, संपूर्ण बनने के कारोबार में टाइम लग जाता है। फिर बाबा ने दूर वाले बच्चे या सन्मुख वाले बच्चों को कहा, बच्चे सभी अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, पर अटेंशन के साथ बाबा ने क्या इशारा दिया, बच्चे कभी धोखा नहीं खाना, गफलत में नहीं रहना। अनेक प्रकार की माया की बातें आएंगी, माया के प्रलोभन आएंगे, तो बाबा ने क्या सावधानी दिया, अनेक प्रकार की बातें आएंगी तो धोखा नहीं खाना, अटेंशन दो, अपने ऊपर अटेंशन दो, देते रहे हो और देते रहना, भविष्य में कोई भी बात आ जाए अपने ऊपर का अटेंशन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी मदद चाहिए तो निमित्त बने हुए द्वारा मदद ले सकते हो, ऐसे नहीं कोई कहे किससे ले लेवे, निमित्त का पता है, दादियां है, दादे हैं, दादियां भी हैं, बाबा ने निमित्त बनाए हुए ऐसे है। ऐसे व्यक्तियों के पास जाओ जिसको बाबा ने क्वालिफाई किया हुआ है, जिसको बाबा ने रिकग्नाइज किया हुआ है, इस प्रकार से उनके पास जाओ, सबके पास नहीं जाओ। संस्कृत में श्लोक है, रे रे चार 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 रे रे चातक सावधान मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बुदा बहो वसंती गगने केतु दृश्यति। मतलब चातक पक्षी जो है वो बादल में जो होता है बादल को देख करके कहते हैं बरसो बरसो मुझे पानी पीना है, तो इसलिए भर्तृहरि कहता है चातक को कि सभी बादल जो उसमें पानी नहीं होता है, कोई कोई में ही होता है, तो इसलिए कोई कोई के ऊपर आप इच्छा रखो कि इनसे हमको पानी मिल जाए। इस प्रकार से बाबा ने भी यहाँ कहा है तो अटेंशन दो। कोई भी कहे कोई कोई कहे किससे ले भी, निमित्त का पता है, बाबा ने बता दिया ये जो निमित्त है उनके पास जाकर के कहो। ऐसे नहीं सब जगह पर जाकर के वॉमिट करो, बोले अपने बातें करो, लेना दे दो। जो निमित्त है, निमित्त का पता तो है, दादियां हैं, दादे हैं, दादियां सब जो भी निमित्त बने हुए रिकग्नाइज किए हुए हैं, यज्ञ भी इस प्रकार से रिकग्नाइज सिस्टम के द्वारा चलता है। तो इसलिए बाबा कहें अपने अंदर कोई भी बात की गलती मत रखना, अगर हो गई तो बाप दादा से दिल में पश्चाताप करके भी उसको खत्म करो, क्योंकि हमारे में एक कमजोरी है, हम अपनी गलतियां छुपाना नहीं चाहते हैं। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है, साइकोलॉजी में कहते हैं डू नॉट बी दी एडवोकेट ऑफ योर ओन वीकनेसेस, अपनी कमजोरी के वकील मत बनो। अगर हम अपनी कमजोरी के वकील बनकर के उसकी वकालत करेगा, ऐसा तो होता ही है, कौन नहीं बचा हुआ है, कौन नहीं करता है, इस प्रकार की बातों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, कभी भी आप अपनी गलती को ऐसा महसूस नहीं कर सकेंगे और गलती को दूर नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि अपनी गलती में अच्छा ठीक है, औरों के पास जाकर के कहने की हिम्मत नहीं हो तो बाप दादा के दिल से, हाँ बाबा से दिल से पश्चाताप करिए। सुबह योग करते हैं उस टाइम पर भी बाबा को पश्चाताप का कारोबार कर दीजिए। हमारे यहाँ मधुबन में भी पांडव भवन जाते हैं तो बाबा के कमरे में बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर भी हम लोग कहते हैं कि जो भी आपको कहना वो बाबा को लिख करके दे दो, और कोई पढ़ेगा भी नहीं, खाली बाबा के पास पहुंच जाएगा। इस प्रकार से बाबा ने बहुत सरल युक्तियां बताई हुई है, परंतु हम अपने देहाभिमान के कारण क्या करें, समझते नहीं है। इसलिए बाबा कहते दिल से पश्चाताप करो और आई हुई इस मुसीबत को खत्म करो, और उसको जमा नहीं रखो, दिल में जमा नहीं रखो। जैसे मैंने कहा ना, अंश होता है, अंश का वंश भी हो जाएगा। बाप दादा ने फिर अपनी शक्ति, सर्वशक्तिवान बाप है कैसे है उसका बता दिया है। बाप दादा हरेक का खाता देखते हैं और देखते हैं कि हरेक का खाता कैसा है, हम सबका खाता ऊपर रखता है बाबा रखा हुआ है। बाबा ने कहा ऐसे तो कहा सबके खाते ओके है, वेरी गुड है, इसमें हाथ उठाओ कि सबका खाता ठीक है, तो सबने हाथ उठाया, तो बाबा ने कहा उसमें तो सब हाथ उठा रहे हैं। फिर दादी को बुलाया गया, दादी आओ इधर आओ, देखो सबके हाथ देखो, सब ठीक है ना, आओ दादी, दादी को ले आओ। इस प्रकार से बाबा ने दादी जी को बुलाया, फिर क्या हो गया, दादी अकेली जानकी दादी को बुलाया तो इसके बदले में सब पहुंच गए ऊपर। फिर ऊपर से ही मुन्नी बहन ने कहा हाँ कि आज सेवा का टर्न पंजाब का है, बहुत सुंदर पंजाब के टर्न के बारे में पंजाब के बहन भाइयों की और पंजाब की सेवा के लिए बाबा ने कहा है कि पहले पहले अमृतसर में सेंटर खुला था तो गुरुओं को तो वहां बहुत था, लेकिन पंजाब वालों ने सबके ऊपर जीत पाई और अपने सेंटर को निर्विघ्न चलाए, इसलिए पंजाब वालों को बाप दादा धन्यवाद दे रहे हैं। गुरुओं के स्थान पर सदगुरु की जीत करके दिखाई, अच्छा किया। गुरुओं की गद्दियों के बीच में ब्रह्मा कुमारी का सेंटर अमर रहा और निर्विघ्न चलता रहा। और फिर बाबा ने कहा निर्विघ्न चलाना, हाँ तो पंजाब के टीचर्स को हाथ खड़ा करवाया और बाबा ने कहा सभी टीचर्स ने मेहनत तो अच्छी की हुई है, क्योंकि बाबा ने हमसे महिमा इसलिए कही, बाबा ने कहा इसलिए मैंने महिमा की कि आज पंजाब का टर्न है, इसलिए पंजाब को आगे रखा हुआ है। सब सेंटर सब जोन सभी मेहनत तो करते हैं। फिर मोहिनी बहन के बाबा ने बताई, मोहिनी बहन की बात सबने बराबर नहीं सुनी होगी, बाबा ने बीमारी के अंदर क्या दवाई हो सकती है, श्रेष्ठ दवाई है क्या हो सकती है, बाबा ने कहा बाबा मेरा बाबा यह बहुत अच्छी दवाई है, आप ट्राई करना, बीमारी आपके सामने पास में आ जावे। हाँ तो बीमारी दूर करने के लिए डॉक्टर के पास तो जरूर जाना चाहिए, तो साथ साथ मेरा बाबा कर करके दवाई लो तो क्या हो जाएंगे, तबीयत अच्छी हो जाएगी। फिर मुन्नी बहन से बात किया, फिर डबल फॉरेनर से बात किया, बोले ना बाबा ने उनको भी दिया कि जितनी सेवा करते हो उतना समाचार कम देते हो। ये बाबा का जो उलहना जो है ना उसको दूर करने के लिए हमारे गॉडलीवुड स्टूडियो के भाई बहन मेहनत कर रहे हैं। समाचार रोज समाचार आते हैं, दिन में 2 बार आते हैं, हफ्ते में 3 बार आ जाते हैं, और इसके लिए हमने फॉरेन सर्विस का भी एक टेस्ट बनाया हुआ है। कल भी जयंती बहन के साथ हमारे हरिलाल भाई की बात हुई, दिनेश बहन भी जो है आई हुई है उनके साथ भी बात हुई है, तो इसके कारण फॉरेन के भी समाचार यहाँ आएगा और हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा देश और विदेश में जो भी सेवाएं हो रही है उस सेवाओं का समाचार सबको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से गॉडलीवुड स्टूडियो भी जो है देश विदेश का समाचार क्या है, ज्ञानामृत में भी आता है, सब जगह पर आता है, परंतु एक महीने के बाद छपता है, और ये रेडियो के अंदर जो टीवी के अंदर जो न्यूज आएगा, आप सबको भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके सेवा केंद्रों पर कोई भी अच्छी सेवा का कारोबार हो उसकी आप वीडियो क्लिप बना लीजिए। आजकल तो 40,000 रुपये में कैमरा मिल जाता है, वीडियो कैमरा, उसको क्लिप कर करके उसको कंप्यूटर के द्वारा गॉडलीवुड स्टूडियो में भेज दो, तो आपके अच्छे अच्छे समाचार जो भी होंगे उसको सुनाएंगे, तो सारी दुनिया में 24 घंटे में आपके यहाँ के सेवा का समाचार हो सकता है। ये आपके हाथों में है, आपके द्वारा अच्छी अच्छी जो भी सेवाएं होती है उसका समाचार गॉडलीवुड स्टूडियो के अंदर आप भेज देंगे, गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा सारी दुनिया के अंदर पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा। आज भी सुबह आप लोगों ने सुना होगा जैसे बाबा का कार्य मुरली का कार्य पूरा हुआ और स्विच ऑन हो गया पीस ऑफ माइंड चैनल, तो पीस ऑफ माइंड चैनल के अंदर देश विदेश का समाचार जो है आता रहा और बहुत इतना सुंदर आता है कि जैसे अखबार जैसे आज तक आदि जो भी चैनल है उसमें जैसे न्यूज आती है इनसे भी अच्छी, जैसे कि उसमें तो क्या होता है, मैंने एक बार नोट किया आज तक में 25% न्यूज आता है और 75% एडवर्टाइजमेंट आती है, 25% न्यूज आता है 75%, क्योंकि वो कॉमर्शियल है, वो कॉमर्शियल दृष्टिकोण से ही कारोबार करते हैं, और हमारा कारोबार जो उसमें 100% न्यूज होते हैं, कोई भी प्रकार के कॉमर्शियलिज्म कोई भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आदि हमारे कारोबार में नहीं होता है। तो इसलिए आप सबसे हमारा अनुरोध है कि इस प्रकार का हमारा बाबा का जो स्टूडियो जो है उसको भी न्यूज चैनल के रूप में काम करें, काम में लावे। अभी तो आप पहले हफ्ते में 1 दिन करते थे, अभी 2 दिन करते, अभी हफ्ते में 3 दिन कर दिया है। जितना जितना हमारे पास न्यूज आता रहेगा, समाचार आता रहेगा, हम समाचार ज्यादा में ज्यादा दिन में मतलब हफ्ते में 7 दिन रोज ही समाचार का कारोबार कर सकते हैं। आज समाचार मिल गया, शाम को 5 बजे तक जो समाचार मिल जाता है हम उसको उसके अंदर रिकॉर्ड कर करके दिल्ली भेजते हैं और शाम को 7 बजे के न्यूज में वो आ जाता है, मतलब 2 घंटे के अंदर आपका द्वारा मिला हुआ समाचार मिल सकता है सबको दिल्ली के द्वारा, क्योंकि दिल्ली से रिले होता है, तो इसलिए इतना 2 घंटे तक इतना लेटेस्ट समाचार सबको मिल सकता है अगर आप सब सहयोग दो तो। इसलिए पंजाब के बहन भाइयों के हमारे अनुरोध है, हमारे पास भी बातें आ रही है पंजाब के अंदर भी, इसकी ईश्वरीय सेवा का कैसे कर लेगा। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि समाचार कम देते हैं, तो कोई ऐसा मुकरर करो जो मास दो मास के बाद सब तरफ से रिजल्ट लिख करके भेजे। मास दो मास के बाद नहीं है, रोज के बात होती है। और आज की दुनिया में टीवी के द्वारा क्या हो गया है, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा सेकंड में समाचार पहुंच सकते हैं, और सेकंड में समाचार पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ना, दो घंटे पहले के सेवा के समाचार भी पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा समाचार के रूप में सबको संदेश मिल सकता है। फक्त बात यह है, आपके द्वारा आपके स्थान पर किए हुआ, चाहे देश चाहे विदेश में किए हुए सेवा का समाचार हमको मिले, हम उसको समाचार के अंदर जो समाचार का बुलेटिन जो होता है उसके अंदर उसको स्थान दे करके दो घंटे के अंदर सारी दुनिया को समाचार दे सकते। इतना हमारा सेवा का फील्ड, सेवा का समाचार का कारोबार इतना लेटेस्ट है, जितना आज तक आदि जो भी आप NDTV आदि सुनते होंगे उनके द्वारा भी समाचार मिलता है, इस प्रकार से समाचार मिलता है। परंतु उसमें कॉमर्शियलिज्म बहुत होता है, एडवर्टाइजमेंट बहुत होती है। हमारे यहाँ शुद्ध समाचार, समाचार एंड समाचार एंड समाचार, उसके सिवाय कोई कॉमर्शियलिज्म नहीं, इस प्रकार का हमारा कारोबार होता है। वहाँ तो क्या होता है, कॉमर्शियलिज्म के हिसाब से किसी को आगे बढ़ाना है, किसी को पीछे रखना है, फिर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी समाचार होता है। क्या क्या होता है, क्या क्या बात बताऊं आपको, सब प्रकार की बातें दुनिया के अंदर समाचार देने वाले पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। किसी ने पैसा दिया तो उसकी महिमा करते हैं, किसी ने पैसा नहीं दिया उसकी महिमा नहीं करते हैं। मुझे मालूम है, मैं आपको एक हकीकत सुनाऊं। अहमदाबाद के अपने मेहसाणा में बहुत ही अच्छा बड़ा प्रोग्राम था, तो मेहसाणा के भाई बहनों ने नक्की किया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, तो अखबार में एक सप्लीमेंट्री का एक पेज लेना चाहिए। इनके पास ज्यादा बजट नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, गुजरात समाचार के अंदर एक पेज का सप्लीमेंट डाला। बस इतना डालने से क्या हो गया, उनके जो कंपटीशन के दूसरे अखबार वाले थे ना, इन्होंने उलेना दे दिया, इन्होंने हमारे विरुद्ध में लिखना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने विरोध में लिखना शुरू हो गया तो हमारे मेहसाणा के बहन भाई उनके पास गए कि आपको क्या हो गया, आपको क्यों वैसा होता, आप क्यों हमारे विरुद्ध में लिखते हो। तो उन्होंने कहा कि आपने उनको एडवर्टाइजमेंट दिया, उनके आपने सप्लीमेंट दिया, उनको कुछ किया, आप ध्यान में रहे कि हमारे को भी अपना पेट है, हमको भी पैसा चाहिए, हमको भी पैसा चाहिए। आपने हमने कहा क्या करें, एक पेज का हमारे पास बजट था, इन्होंने कहा एक पेज का बजट था तो आप सबको बांट करके देना था, एक ही अखबार को सारा पेज दे दिया, ऐसा क्यों किया, सबको बांट करके देते थे तो सब आपके साथी बन सकते थे। तब से हम लोगों ने नक्की किया हाँ कि सबको अखबार वाले को भी उलेना देने का चांस नहीं देना चाहिए। फिर बाबा ने विदेश के बारे में कहा कि इंडिया कल्याणकारी नहीं परंतु विदेश कल्याणकारी भी बाबा बन गए, कि हर समय बाबा कहते हैं कि विदेशियों के कारण बाबा विदेश कल्याणकारी भी बन गए हैं। विदेश वालों ने बाबा ने कहा सेवा चारों ओर फैलाई है, और भी विदेश वाले भी ध्यान में रखें कि कोई भी एरिया रह नहीं जाए, और अगर कोई एरिया रह गई हो तो उसको भी ऐड कर करके ईश्वरीय सेवा में शामिल करो। और फिर बाबा ने विदेशियों को कहा अच्छी सेवा मेहनत की हुई है, फिर बाबा ने रिजल्ट विदेश की सेवा की रिजल्ट बहुत अच्छी है, ऐसे कर करके सराहना दी। फिर निर्भय भाई से बात किया हॉस्पिटल के बारे में, फिर ब्रिजमोहन भाई से बात किया गीता का भगवान के बारे में। बाबा ने कहा तो अहिंसा परमो धर्म वाला सब टॉपिक रखा हो तो ठीक है, उसको थोड़ा चेंज करो, और चेंज करो, अहिंसा परमो धर्म नई बात तो थी लेकिन आकर्षक नहीं थी। ये बाबा ने बहुत सुंदर डायरेक्शन दिया, तो कोई भी हम टॉपिक रखे तो टॉपिक के अंदर थोड़ी तो कोई आकर्षक बात होनी ही चाहिए, जिसके कारण लोग जो है सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो आकर्षण वाली टॉपिक हो, थोड़ी पॉइंट्स भी निकालो, थोड़ा चेंज भी करो, और सोचो थोड़ा क्या करना चाहिए। सभी सोचे जिस टॉपिक में आकर्षण हो ऐसे टॉपिक निकालो। और बाबा ने बहुत हंसी में कहा कि ऐसा कभी नहीं सोचा हमारा क्या होता है क्या जाता है क्या क्या भी हो। नहीं, बाबा कहते हैं लेकिन समझे हमारा ही फायदा है, जो भी सेवा करते हैं हमारा ही फायदा है, उसी दृष्टिकोण से सेवा करो, ऐसे सोचो। फिर पंजाब की बहनों के साथ बातें किया बाबा ने, पंजाब में कुमारियां बहुत अच्छी निकाली हुई है, टोटल पंजाब अच्छा चल रहा है, एक दूसरे को सहयोग की बातें कही। फिर प्रेम बहन ने सवाल पूछा कि हरिद्वार में संत सम्मेलन करें, बाबा ने कहा कुछ भी करो हलचल कराओ, शांति से सुन रहे कुछ उसका इस प्रकार से मिक्स होता है, उसके बदली में ओरिजिनल ज्ञान क्या है वो सुनाने का प्रयत्न करो। हम कभी कभी क्या करते हैं, ज्ञान को ऐसा गोल गोल घुमा करके देते हैं कि उसके ज्ञान की ओरिजिनलिटी जो है ना उसको दूर कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कल कहा कि ज्ञान की ओरिजिनलिटी जो है वो बता सबको सुनाओ, और यह आवाज निकालो कि ब्रह्मा कुमारियां कृष्ण के बजाय शिव गीता का भगवान है वो कहती है। यह आवाज निकले यह पंजाब की सेवा है, और ऐसा आवाज निकलेंगे तो बाबा ने पंजाब वालों को आप सब बैठे हुए उनको बाबा ने कहा कि तो बाबा प्राइज निकालेंगे कि यह आवाज निकालो। कोई माने नहीं माने लेकिन यह तो कहे कि ये ब्रह्मा कुमारी इसका मत है कि गीता का भगवान शिव है कृष्ण नहीं है। शांति से चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि चुप हो जाओ, बाबा ने कहा कोई सोचो और कोई कमाल करो, सब सब सभी मिलकर के राय करो, सभी मिलकर के राय करो, इस प्रकार से बाबा ने कहा है। फिर जयंती बहन ने भी बाबा को कहा कि दादी जी को आपने एक हफ्ते के लिए लंदन भेजा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कहा। और इसके बाद बाबा ने भोग बहुत स्वीकार भी कराया, सब कुछ हुआ, और उसके बाद बाबा 9:46 पर हम बच्चों से विदाई लेकर के फिर मूल वतन में या परम धाम जिसको जो भी कहो वहां पर चले गए। इस प्रकार कल की यह मुरली है, जितना हम कर सके इतना करना चाहिए नहीं परंतु पूर्ण रूप में करना चाहिए, उस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके रखे रहे। इस प्रकार की बातें कल बाबा ने हम बच्चों को सुनाई है। बाबा का एक महावाक्य अवे भी आप सब जानते हैं, जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा। सुना तो सबने, कल की मुरली सारा ही दैवी परिवार ने सुना। करेगा कितना करेगा क्या करेगा आपको मालूम नहीं है। 1988 में यज्ञ के अंदर नक्की हुआ ईच वन टीच वन, मतलब एक साल के अंदर अन्य एक आत्मा को बाबा का बच्चा बनाना, ऐसा कारोबार सेवा का प्रोग्राम बनाया था 1988 में। तो हमने तो दादी प्रकाशमणि को कहा कि दादी आपके पास तो डबल संख्या हो जाएंगे, अभी समझो 3 लाख है तो 6 लाख हो जाएंगी, और इस प्रकार से बातें हुई। बाबे के बाप दादा से भी बताया गया, बाबा ने कहा बच्चों देखो तो सही क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट में यही हुआ 100 के बदले में डबल ईच वन के हिसाब से 100 का 200 होना चाहिए, इसके बदले में रिजल्ट आई। सारे सेवा साल का सभी सेवा केंद्रों का टोटल करके देखा तो 100 का 200 के बदले में 100 का 108 हुआ, 100 का 108 हुआ। माना 92% बहन भाइयों ने मेहनत नहीं किया, सिर्फ 8% बहन भाइयों ने मेहनत किया, ये हमारा रिजल्ट है 1988 का। इस प्रकार से कल बाबा ने ऐसा कहा कोई भी एरिया ना रह जाए, आदि आदि बात तो कही, कितना रिजल्ट आएगा। जैसे ईच वन के कारण 92% लोगों ने किया ही नहीं, जो होता है ना वो बिरबल की और अकबर की कहानी है। अकबर ने कहा सब दूध का घड़ा भर करके होज में डाल देना, तो क्या किया, सबने कहा सब भर के लेके आएंगे, हम अपना पानी का घड़ा भर के ले जाएंगे तो क्या होगा। और इसने सुबह देखा तो होज जो है वो पानी से भरा हुआ था, दूध उसने भी नहीं डाला। इस प्रकार से हम भी यही सोचते हैं कि और लोग करते हैं, करने दो, और उसके कारण क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा 100 के बदले में 108% ही डिवाइन फैमिली की पॉपुलेशन बढ़ी। इस प्रकार से कल की मुरली के आधार पर ईश्वरीय सेवा का रूप कितने तक कहाँ तक बदलेगा ये हमारे हाथों में। बाबा ने तो इशारा दिया और अचानक की बात भी कही, सब कुछ कहा, परंतु फिर भी करने की बात हमारे ऊपर है। तो हम सब दृढ़ निश्चय करें कि कल बाबा ने जो बात कही है उसको 100% सेवा के रूप में, एरिया का कोई भी ना रह जाए, इस प्रकार की भोलेना की बात जो कही उसके आधार पर कारोबार करें, और अचानक होने वाली कोई भी बात हो उसका सामना करने के लिए हम तत्पर रहे। तो कल की मुरली में उलैना और अचानक, कोई उलैना न दे और अचानक की कोई भी परिस्थिति आवे उसके लिए उसको सामना करने का हम तैयार रहे, ये कल की मुरली का सार है। उलैना कोई हमको उलैना न दे दे और कोई भी अचानक की परिस्थिति आवे उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हम 100% तत्पर रहे और परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। तो ये दो शब्द उलैना और अचानक कल की मुरली का सार अगर हम समझ लें तो सारी मुरली हमने समझ लिया। तो ये अभी हमारे हाथों में है, हम कहाँ तक समझे हैं और कहाँ तक उसके आधार पर कारोबार कर सकेंगे। तो इसी प्रकार से कल की मुरली पूरी हुई, अभी आगे भी बाबा की सीजन आने वाली है, नई सीजन में नई मुरलियाँ आती रहेंगे, नई नई बातें बाबा हमको करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तो क्या क्या होता रहेगा वो हम सब नोट करेंगे। हम सब साथी हैं और साथी बन करके 30 मार्च तक बाबा की मुरलियाँ जो भी चलने वाली है उसको हम सुनेंगे, उसका इंतजार करें और इंतजार के साथ उसका इंतजाम भी करें और बाबा की मुरलियों को जीवन में धारण करने का पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और मैं आप सबको ये शुभ कामना शुभ भावना देता हूँ, आप हम सब अपनी जो शुभ भावना जो है हमारा लक्ष्य जो है वो लक्ष्य हम अवश्य ही प्राप्त कर दिखावे। ओम शांति। एक मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर समाप्त करेंगे।
रहा शिव का संदेश सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में।
सुन रहा शिव का संदेश
में, ओ आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में,
आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में।
गूंज रहा शिव का संदेश, चली दुख भरी रात स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ,
हाँ
आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में,
आओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में।
गूंज रहा शिव का संदेश,